उनकी प्रसन्नता ही हमारा लक्ष्य है, उनकी सेवा। यह तो हमने बतलाया, किंतु दशम स्कंध के बाद एकादश स्कंध में साधन निर्णय किए। दशम स्कंद की कथाओं को सुन करके हमारा स्वरूप सिद्धि में क्या है ये सब की उत्कंठा होती है जानने के लिए। अभी या आज ही बस स्वरूप सिद्धि हो जाए और हम लोग सब एकदम राधा जी की दासी बन जाए, ये तो सब हो जाता है। किंतु साधन से डरते हैं, उपदेशामी से डरते हैं, एकादश स्कंद नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने सोचा कि साधन के लिए उपयोगी है दशम एकादश स्कंद। तो हम लोग कई दिनों तक आलोचना करेंगे इसकी, और फिर तो परिक्रमा आ जाएगी। परिक्रमा पहले तो 3-4 दिन तो उसी में लग जाएगा, दाम बंधन, और इसके बाद में फिर देखेंगे, विचार करेंगे जो क्या हम लोग कर सकते हैं। या तो अक्रूर गए कृष्ण को लाने के लिए वहीं से आरंभ करेंगे दशम स्कंद में टीकाओं के साथ में। एकादश स्कंद भी हो सकता है, विशेष करके उद्धव संवाद इसका हम लोग विवेचन कर सकते हैं। जैसा होगा उस समय देखेंगे। हम तो जब भी जो कुछ देखते हैं नई प्रतीत होता है, नए भाव सब कुछ प्रतीत होते हैं। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद प्रथम अध्याय श्री 12 अध्याय। एनीवन टू ट्रांसलेट, तुम कर सकता है? माधव महाराज बोल है, क्या मैंने कहा? यू शुड ट्राई टू लर्न हिंदी, ट्राई टू ट्रांसलेट माई हिंदी क्लास या कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृत भुवो अवतर अवतारयत् भारम जविष्टम जनयन कलि। कृष्ण सराम, कृष्ण बादरानी उबाच, हुई बादरानी, हुई बादरायण, हुई बादरायण, वही वही सुखदेव गोस्वामी इज बादरानी,
बदरिकाष्ठ।
तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी से। हे महाराज, भगवान कृष्ण बलदेव और यदुवंशियों से आवृत होकर बड़े वेगवान, हिंसा परिणामवादी, कलह उत्पन्न करने वाले कलयुग के जो दैत्य हैं, उनका वध साधन करने के लिए वध कर भूभार हरण किया। कृष्ण के अवतार का एक कारण दैत्यों को, असुरों को का वध कर भूभार हरण करना भी एक है, ये अन्यतम है कारण। किंतु और भी कारण बहुत से हैं। क्या? अपनी मधुर मनोहर लीलाओं को, ब्रज लीलाओं को प्रकट करके कृष्ण प्रेम क्या है, गोपी प्रेम किसे कहते हैं, ये दिखलाना प्रधान कार्य। और अपने बाद में उन लीला कथाओं को छोड़ करके जाना, जिसका श्रवण करके अनंत काल तक के लोग दुखों से दूर हो सकेंगे, जन मरण से दूर हो सकेंगे और भक्ति प्रेमा भक्ति में उनको हो।
Surrounded by Jadubakshi and they kill so many demons, he is very ferocious and their gati means their very strong and they are very ferocious. Krishna will kill them and take the pardon and from that heart. So why Krishna incarnate in this world? There are so many causes. One cause is that mentions Srimad Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhanam Vinashaya Dushkritam. That means Krishna killed the demons and take the body away from this earth. And there are so many causes. One cause among these, by his own sweet pastimes, fire in Braj, he manifests in this world, especially on the soul of the whole world, what is the gopi mood. And another thing more, when he disappeared from this world, he kept his all pastimes behind. Why? Anugraha bhaktanam manusam je masrita bhajate tatvishikrivaja sutrata parobhave. From the timing unlimited, it will hear his pastimes and there will be liberated from this world and attain his pastime, attain his goal of Vrindavan, Prasad Krishna eternally. Hare Krishna.
Jo kopita subahu pandu suta sapatnai हेलन हेलन कच इतरेत रतः समेता हत्वान निपान निरवहत किति भारण। दुर्योधन कलि का रूप है, तो दुर्योधन जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतप्रक्र, काल, जमन, ये सब सब शत्रु, विशेष करके दुर्योधन कपट दूत खेला, जुआ, और द्रौपदी को बीच भरी सभा में अपमानित किया, उनका केश आकर्षण कर नंगी करने के लिए चेष्टा की, विष दिया, जतुग्रीय में आग लगा दी और बहुत प्रकार से पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से बहुत उनको क्रोधित कर रखा था। भगवान कृष्ण पांडु तनय को, पांडवों के पुत्रों को निमित्त कर दोनों पक्ष को, जो उपस्थित राजा लोग थे, उनका विनाश कर रहा। ये कृष्णा जानते हैं कपट का क्या फल होता है, युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि जुए का फल क्या होता है। कृष्ण ने प्रेरित करके उनको जुआ खेलवाया, नहीं तो विनाश नहीं होता, पांडव लोग क्रोधित नहीं होते, दूत घर में वहां इस जातु ग्रह में लक्षा गृह में आग लगवा दी और किसी प्रकार से इनको बचा दिया, उनको विष दान करवाया, लड्डू इत्यादि में विष दान किया। इस प्रकार से पांडवों जैसे क्रोधित हो जाएं तो पांडवों को निमित्त करके मैं सारे जगत के दुष्ट लोगों का संहार करूंगा, ये कृष्ण की काल शक्ति ये काम कर रही है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो इसलिए भूभार हरण करने के लिए कृष्ण ने ये सब काम किए। और भूभार हरण, भूभार राज पितना जदुभिर निरेश गुप्तई सुबाहु भी चिंतयत अप्रमेय मन्ने औने ननु गतो अपत्यागतं हि भारम जज्जथा अहम कुलमहो अभिव्यस्ते। अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण अपने बाहुवीर्य से भूतल का भार हरण कर सकते थे, कृष्ण एक सेकंड के अंदर में सारे विश्व की सारे ब्रह्मांडों की रचना को समाप्त कर सकते हैं और विनाश करके फिर उन्होंने चिंता किया पांडवों के युद्ध में और सब जगहों में जरासंध का वध, कालजवन जैसे व्यक्ति का वध कराकर सोच रहे हैं भगवान, जादू मेरे द्वारा रक्षित हैं, चंतरंगड़ी सेनाओं से बड़े तत्पर हैं, देवता लोग भी इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, देवताओं को ये परास्त कर सकते हैं, किंतु उन लोगों के द्वारा अबद्ध होने पर मैं यदि छोड़ करके इन लोगों को चला जाऊं तो क्या होगा, जो लोग इन चीजों को पा करके बड़े दुर्दांत हो गए हैं, भूभार हरण नहीं होगा, इसलिए कांटे से कांटे को उठाकर कांटे को भी फेंक देना है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका देखो क्या कहते हैं इसकी, अभी तक तो ये सिद्ध स्वामी सनातन गोस्वामी वैष्णव तुलसी इत्यादि का ये सार बतला है, अब देखो ये कैसा हमको बंद करेंगे, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, रुचकर होगा कि नहीं है? अच्छा बोले दो, आर यू इंटरेस्टेड विथ माई एक्सप्लेनेशन ऑफ एकादश स्कंद, यू नंद किशोर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बट ही इज ट्रांसलेटिंग एंड अरण्य महाराज इज ही इज वेपिंग इन अरण्य व्हाट टू डू कैन यू ट्रांसलेट नो नो दिस बॉय ओ या व्हाई यू नो हिंदी Can you? Why Aranya is not come?
Hare Krishna. So, now we will put another slope.
If you cannot understand, then ask. Madhva Maharaj will re-explain.
Sava Bahubi Achintaya Kapramaya Duryodhana, the embodiment of Kali Yuga. Not only that, Moreover, Kamsa, Jarasandha, Kaljavan, all are enemy. So all they are embodiment of Kali Yuga. So Duryodhana invited Pandavas and he played gamble not in self-glory, is very much hypocrite. And Duryodhan disloked Draupadi by this way. He insulted Draupadi, disloked in the assembly of school of all associates, he disloked there. And moreover, Duryodhan arranged to give poison to him with sweet and want to burn them in a house made of black.
আরে এখানে বসে শুনছিস না কেন, কোথায় রান্না করতে যাচ্ছিস? হরি কথা না শুনলে বাস চিত্ত দিগ্ভ্রান্ত হয়ে
যাবে। Krishna knows what is the result of hypocrisy, and Yudhishthira knows what is the result of gambling. But why Yudhishthira, knowing everything, agreed to play gamble? Why so? Because Krishna induced them. Induced by Krishna, inspired by Krishna, Yudhishthira is going to play gambling. And Krishna, he arranged to fire in Lath house and he survived them from there. By this way, Krishna made angry to Pandavas. How come that Krishna's top potency is everything? Krishna is not doing. He has so many potencies. Among one is top potency, the time, he's doing everything. If Krishna wants, if he desires, he can take the body away from the earth. He's Apramaya. He can do all these things very easily. In a second, he can create the universe and can destroy again. After killing all demons, he was thinking that the Jadavas, the Jadav army, their breath is extremely strong and they are protected by myself. None can defeat them. What to say about in this world? Even demigod could not defeat them. They can defeat demigod very easily. So if I disappear from this world, if you then here behind, then they make some chaos, then it is not proper that all bhubharas, that parana part is taken away. So I have to take the thorn away by thorn. So Siddhasami and others, they give this explanation. Now they want to give explanation of Vishwanathapur Thakur. Here is his commentary, all is very pleased. So now we are starting the commentary of Chakravarti Thakur, Hare Krishna.
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी अपने आप जदिच्छा क्रम से घूमते घूमते आ रहे थे और महाराज परीक्षित सातवें दिन तक्षक दशेगा इस अभिशाप को सुनकर राजपाट सब छोड़ दिया और अपने ऊपर भगवान की कृपा मानकर प्रायोशन कर करके गंगा के तट पर बैठ गए। उस जो उन्होंने कहा उसी को सुत गोस्वामी फिर दूसरी सीटिंग में सनक आदि ऋषियों को सराहन कर रहा है। नमिषारण्य पहले गंगा के तट पर हुआ और गोमकी तट पर नमिषारण्य में दूसरी सीटिंग में सुत गोस्वामी सनक आदि ऋषि को वो भागवत की कथा सुना रहे। इस परम मधुर भागवत वर्णन में सुखदेव गोस्वामी विभोर हो गए वर्णन करते थे और पहले से नौम स्कंद तक पर्यंत सृष्टि लीला ध्रुव लीला प्रहलाद लीला अजामिल अम्बरीश आदि भक्तों की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर चरित्रामृत का वर्णन करते हुए अंत में एक दशम स्कंद में स्वयं कृष्ण की ब्रज लीला मथुरा लीला द्वारका लीला का वर्णन किया। अतःपर इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी एकादश स्कंद में एकादश स्कंद में भूभार हरणकारी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्म शाप से यदुवंश को ध्वंस की बात की अवतारणा की, जो कैसे कृष्ण ने यदुवंश का ध्वंस किया एकादश में। इस स्कंद में क्रमशः परम उत्कंठित सुता महाराज परीक्षित के निकट भक्त उद्धव के प्रति जो उपदेश और लीला रसायन पूर्वक कृष्ण को स्वधाम में ज्ञान गमन करने की लीला का वर्णन करते हैं एकादश स्कंद में। कृष्ण ने जो मथुरा की लीला द्वारका के लीला का संपन्न कर और एकादश स्कंद में भूभार हरण करने वाली कृष्ण के द्वारा ब्रह्मशाप के द्वारा यदुवंश का ध्वंस करा, कैसे अपने ध्वंस किया नहीं, कैसे किया, उनमें फूट डाल करके लड़ाया जैसे करो पांडवों के बीच में लड़ाई करा दिया, उनमें विवाद सृष्टि कर दी, ये भी नहीं किया। किया ब्रह्मशाप, ब्रह्मशाप माने कृष्ण जो हैं ब्रह्मण्य देव हैं, ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों का खूब आदर करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो उसी की अवतारणा करके कर रहे हैं इस स्कंद में क्रमशः परम उत्कंठित जो परीक्षित महाराज हैं उद्धव जी के द्वारा उपदेश दिया उद्धव संवाद और कहा जे इसको तुम बद्रिकाश्रम में कौन ऋषि मैत्री ऋषि को जाकर के बतलाना विदुर को कहने के लिए हैं, विदुर को जी को कहने के लिए उन्होंने बतलाया है ऐसा है। इसके बाद में अब उनके स्वधाम की लीला का वर्णन कर, ये कैसे अपने धाम में गए लो बोल दो।
Now, Sri Krishna Chaturvedi Thakur, during his commentary, Paramahansa Shiromani, the crown jewel of Paramahansas, Sukadeva Goswami wandering here and there, by his own desire, no one invited him to come in the assembly of Parikshit Maharaj. When he came there, he came to know that Parikshit Maharaj, cursed by Brahmans, and he will die by snake bite after 7 days. So Parikshit Maharaj, giving up all his activities, royal activities, and giving us even his food and water, and came in the bank of Ganges. So what Sukadeva Goswami described to Parikshit Maharaj in the first sitting of Bhagavatam in the bank of Ganges. After that, Sukadeva Goswami and Sonoka Devi see the assembly in Nainisaranya. Sukadeva Goswami narrated the same thing which was described by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. The first sitting of Bhagavatam was in the bank of Ganges, second one is in Nainisaranya. So Sukadeva Goswami, let's try from 1st to 9th canto about creation, the sweet character of Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, and so many devotees. After that, in 10th canto, Sukadeva Goswami has described the sweet pastime of Krishna in Braj, after that Mathura, after that Dwarka. So, At last, so Sukadeva Goswami, 11th canto, he described how Krishna did Bhubadhadan, that's how they take bird and egg from the earth. And after that, how Krishna destroyed his own dynasty in Yadubamsa. So, Parikshit Maharaj, who was the Srota, audience, he gave instruction to Uddhav, and after that he did Lila Rasayan and he went to his own abode.
Golok Dham.
Abode Golok Dham. How Krishna take the burden away? We have heard as before. After taking the burden away, Krishna destroyed the Yadubamsa. How come? Has he did by himself? No. Has he arranged any, so Kaurava and Pandavas, he forced them to fight each other. Has he did like this for his own dynasty? No. So how he destroy his own dynasty? He destroy his own dynasty by Brahmasa, because by a Brahmin. Krishna himself, Brahmanade, means he worship Brahmanas, respect Brahmanas, obey the Brahmanas. So Parikshit Maharaj, he told Bhartha Uttar Sambhad, and Krishna asked Uddhav to tell to Maitreya Rishi, to tell all these things, instruction to Vidur. Now what happened? Now
Buddha
is describing after that.
Ab jara savdhani se suno. Ab savdhani se suno. Kali jeevon ke uddhar ke liye bahut gurd Vishwanath Chakravarti Thakur ka tika hai. Kali jeevon ke kalyan karne ke liye Bhagwan Vedavyas भागवत रूप भक्ति बीज का बपन किया, रोपा लगाया. भक्ति बीज क्या? ये भागवत है. और वही द्वादश स्कंदात्मक भक्ति कल्प तरु के रूप में बदल गया. ये भागवत बंचाल कल्प तरु से भी बदल गया क्या? भागवत कल्प तरु. वृक्ष लगाया गया, पहले वर्ष उसमें फल लगा, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष. कहते हैं भक्ति, ये विश्वनाथ का ये हमें हमको पता नहीं था, किंतु ये कह रहे हैं कि जितना वृक्ष पुराना होता जाएगा उसका फल का रस उतना ही मधुर और गाढ़ा होगा. तो ये भागवत रूपी कल्पतरु जितना ही पुराना होता जाएगा इसका रस मधुर गाढ़ा और सुरस होगा. पदे हाँ, तो पदे पदे एक पद के बाद में दूसरा वाला जो होगा वो और मधुर होगा, और उसके बाद वाला जो पद में आएगा तो वो और मधुर होगा. उस फल का रस जितना ही वृक्ष प्राचीन होता जाएगा उतना ही गाढ़ा और मधुर होगा. अप्राचीन क्षुद्र वृक्ष अनुच्च थके, जो नया वृक्ष है वो अतिशय क्षुद्र होता है, बड़ा नहीं होता और बहुत छोटा रहता है. अभी तो अभी बड़ा है, जितना बढ़ेगा तो उतना ऊंचा होगा और उसको सहज ही उसके फल को नीचे से ही तोड़ सकते हैं. विदेशों में देखा है इतने इतने बड़े ऊंचे पर वृक्ष में फल लगे हुए आदमी तोड़ सकता है, बहुत सुख से लगे. किंतु प्राचीन या उच्च या जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, आम का वृक्ष या किसी चीज का वृक्ष, उसको नीचे से खड़े होकर के उसको नहीं ले सकते. उसका फल बहुत मधुर होगा, उसकी डालियां ऊंची रहेगी, ऊपर सबके लिए नीचे से ही खड़े होकर के उसको तोड़ नहीं सकते। भगवान भक्तों के बड़े प्रिय हैं, भक्त भी उनके बड़े प्रिय हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, यह फल बहुत सहज रूप में भक्तों को मिल सके इसलिए उन्होंने क्या किया, ऊंची डालों पर चढ़ने वाले कौन, देवर्षि नारद और उद्धव जैसे पेड़ पर चढ़ने वालों को कहा जी पेड़ पर चढ़ जाओ, कौन वृक्ष, श्रीमद् भागवत रूपी प्राचीन वृक्ष के ऊपर जो कि उसकी डाले बहुत ऊपर हैं और फल बहुत पके हुए मधुर हैं, बहुत ऊंचे हैं जिनको सब लोग नहीं ले सकते, तो उस पर एकादश डालियों के ऊपर जो अंतिम डाल है ऊपर द्वादश बारह डाले हैं तो ऊंची वाली में साधन का रस, तो ये उस पर उनको कहा जाए तुम लोग चढ़ जाओ और नीचे जो खड़े हैं वहां से फल तोड़ो पका हुआ मधुर और नीचे जमीन पे डाल दो। नीचे कौन है, श्रीधर, वैष्णव तोषणी का जीव गोस्वामी पाद, और ये लोग फल उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे मैंने ले रहे, बीन रहे हैं, वो ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे से उसको ले रहे हैं, फल टूटता फूटता नहीं है, फल भी ऐसा रसमय टूटता फूटता नहीं है। और उन भक्तों में से जो नीचे खड़े हैं फल लेने के लिए उसमें विश्व भक्त श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नीचे खड़े हैं फल के लिए और वो फल ले करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं, भक्तों को बांट रहे हैं मधुर फल। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की ठीका का ये भाव है, थोड़ा सा जो अनुवाद कर रहा है उसने उनका नाम दे दिया, उन्होंने विश्वनाथ का नाम दूसरे रूप में दिया है, इस रूप में नहीं दिया है। कैन यू एक्सप्लेन, हैव यू अंडरस्टूड, तुम्हें बुझते पार छो।
हरे कृष्ण। Now, Sri Gurudev, please listen carefully. So, what Krishna did, he arranged Kalpa picture. What is Kalpa picture? The Bhagavatam is Kalpa picture. So, Krishna bore the seed of Kalpa picture.
Who?
Why?
Who? कृष्णा व्यासदेव।
सो व्यासदेव डिड हिमसेल्फ
कली जीव के कल्याण के लिए भगवान वेद व्यास जी ने भागवत रूप भक्ति बीज का बपन किया और द्वादश स्कंद के रूप में वो कल्पतरु भागवत कल्पतरु के रूप में
Kalijugas and the living entity of Kalijugas, that's that it himself, the Bhagavat Kalpa picture. And it has 12 branches. And this is more greater than Pancha Kalpataru. This is Bhagavat Kalpataru. So, from
when understanding,
someone will
understanding.
We arrange a tree, then fruits will come in first year, then second year, third year, fourth year. So Vishwanath Chakravarti is describing here, the tree will be more old, the fruit will be more sweet and sweeter and sweeter, and juice will be more sweeter and more thick. Just like swadu swadu pade pade, taste here, another will be more tasty like this. Aprachi means the new tree. It is very short, not so big. And when they will grow enough, then they will be big enough, and their branches will grow so high. The small tree, when they are full of fruits, someone can pick up the fruits very easily. But for all it is not possible. Within your life, within a city western country, there are so many trees, someone can pick up the fruit in standing on the earth. But when tree will be very big, like mango and others, their branch is so high, none can pick up the fruits standing on the earth. So have to climb on that tree, otherwise not possible to get that tree. So Bhagavan is very near and dear to his devotees, and devotees are very near and dear to Bhagavan, vice versa. So Bhagavan arranged how devotee can get the fruits very easily. So he asked, who is very expert to climb on the tree, especially in the highest branch of the tree, who are they? Like Devarshi Nara, Uddhavji, etc. Krishna asked them to climb on the tree. So they climbed, influenced by Krishna, the top of the tree, and Krishna asked them to order them to pick up the fruits from there and drop to the down. Who is standing on the down? So who are they? So then who they told from the country of Chakra Chakur? Siddhar Samipa, Sanatan Goswami, Jeev Goswami, Sri Vishwanath Chakra Thakur, etc. So Uddhavji and Naradji, they climb on the tree and they are picking fruits from there. And according to desire of Krishna, they are dropping down on the ground, but fruits are not breaking. So who in the bottom, they are picking the flower, all the fruits. So among them, Sri Vishwanath Thakur told, I am Vishwa Bhakta, the devotee for the whole universe. I am picking the flower, dropping by Uddhava and Narada, and distributing all devotees in the world. Hare Krishna.
Can you tell some easy language? Yes. They are standing to pick up. And also in them, Vishwanath Chakravarti is also standing. In ground here. And for us, Vishwanath Chakravarti Thakur distributing the sweetest fruit. You can speak in easy language. Have you understand? So no need of need?
Srila Prabhupada is explaining Srila Vishwanath Thakur's commentary on the first verse of the 11th canto of Srimad Bhagavatam. There it is explained that Krishna is very merciful to deliver all the jivas of Kali Yuga. So, by his mercy, Srila Vyasadeva, he brought to this world the seed of one tree. This tree is the Bhagavat Talpataru. It is a desire tree that could fulfill everyone's desires in the form of Srimad Bhagavatam. So Srila Vyasadeva, he planted that seed and it began to grow. So when a tree is growing, after 1 year, then some fruit comes, but the fruit is not very flavorful. The second year, more fruit comes. The third year, more fruit comes. But the older the tree becomes, then the better the fruit is. The older the tree is, then this fruit has more rasa. It's more condensed, it's sweeter. So, in the same way, swadu swadu pade pade, in Srimad Bhagavatam, every verse has so much rasa. each verse that comes as more rasa than the verse that came before. So, in the young trees, when they're small, then a person standing on the ground can come and reach up and just pick the fruit with their own hands. But when a tree becomes old and it's very tall and it has very good fruit, at that time you cannot reach the fruit from the ground. And especially in the higher branches, there the fruit is the best of all. So Krishna is very kind to his devotees, and he has so much love for them, and they almost have so much love for him. So he wanted to give mercy to the devotees. So Krishna ordered those who were very expert at climbing trees, like Naraji and Uddhava. And on the order of Krishna, they climbed to the top of the tree, because they knew the skill how to get access to the very highest and the best fruit. So they went to the top of the tree. This tree has 12 branches. So Narada and Uddhava, they went to the top, and they took the fruits, and they started to pass down the fruits. So at the base of the tree, then great Vaishnavas were waiting and receiving these fruits, which were selected by Narada and Uddhava. Who are they? First, Sri Daswami. He is the first commentator on Srimad Bhagavatam. He tasted it, he read it first. Then, Srila Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami has written his commentary called the Brihad Vaishnav Toshani. Then after him, Srila Jiva Goswami, he wrote Lagu Vaishnav Toshani, his commentary. And then, at the bottom of the tree, there is Srila Vishnachakri Thakur. So, he's saying, his mood of his commentary is that after this fruit was passed down, and after it was caught by Sri Sridharaswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, then they passed it to me. And my service is, I am only distributing the fruit that has come through their hands. This is the mood of Srila Jiva Goswami presenting his commentary. Krishna Chaitanya Thakur in presentation of his commentary.
भगवान के इस जगत में अवतरित होने का अन्य कारणों में एक कारण है भूभार हरण का। भूभार हरण कैसे होगा? असुर के रूप, असुर लोग राजा के रूप में जन्म ग्रहण करके भूभार हरण किए, भूभार उन्होंने किया था। भक्ति पथ के परिपंथी, भक्ति पथ के विरोधी, भक्ति साधना के प्रतिकूल आचरण करने वाले दैत्य दानवों, दानव लोग, ये निपति के राजा, बड़े बड़े राजा के रूप में उस समय आए थे। उन लोगों का वध आवश्यक था, उनकी मुक्ति आवश्यक थी, किंतु भक्त भगवान के इतने प्रिय वस्तु हैं कि भक्तों की सहायता के बिना वो किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। असुर हरण भी किया है तो भक्तों का साथ लेकर के करेंगे, उनके माध्यम से कराएंगे, अपने नहीं करते। उद्धत दुर्योधन इत्यादि वध के लिए कपट पास खेला में छल से कृष्ण ने लगाया, जो पांडवों का क्रोध नहीं है, उनके प्रति अपराध नहीं होने से उनको मारूंगा कैसे या मरवाऊंगा कैसे, इसलिए सूत्र तैयार करके और अर्जुन की सहायता से और भीम की सहायता से कुरुक्षेत्र के समर में उनको पकड़ किया, दुष्टों का संहार किया भूभारण हरण के छल से। उच्छृंखल क्षत्रियों का वध करने के बाद में देखा कि भूभार हरण करने के लिए तो आया, किंतु अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं। कारण क्या है? बहुत से कुछ उच्छृंखल जादव हैं, उच्छृंखल जादव ये रह गए हैं, और उन्होंने देखा कि ये देवताओं के लिए भी अजेय हैं, देवता लोग भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने लोगों के प्रति, अपने बंधु बांधवों के प्रति मनुष्य का स्वाभाविक पक्षपातित्व होता है, उसके दोष त्रुटि को छिपाकर मनुष्य संसार में विचरण करता है, अपने बंधु बांधवों का दोष छिपा करके भी और उनकी रक्षा करता है। किंतु सर्वभूत में समदर्शी भगवान के लिए ये संभव पर नहीं है। विदर्शित वो समदर्शी हैं सबके लिए, जितने असुर हैं असुर हैं, विशृंखल हैं उच्छृंखल हैं वो भी उच्छृंखल हैं, उनको भी दंड देना है। इसलिए उच्छृंखल जो बहुत से कुछ जादव लोग रह गए थे, कौन उच्छृंखल? कृष्ण के अपने वंश में उच्छृंखल कोई हो सकता है कि नहीं? उनके परिवार में जो कि वहां से द्वारका के नित्य धाम से आए हैं, द्वारका में रहते हैं, कोई बुरी भावना नहीं आ सकती है, कृष्ण का विरोधी भाव नहीं आ सकता है, तब भी बाह्य दृष्टि से नरलीला का अनुकरण करके कह रहे हैं। तो कह रहे हैं वे अपने उच्छृंखल जो जदु हैं उनको भी जब तक कि वध नहीं कराएंगे तब तक उनकी भगवत्ता क्या है। इसलिए कृष्ण ने इस काम को एक दूसरे ढंग से ऐसे किया, ये नहीं नहीं सांपो मर जाए लाठी भागे ना की ऐसे बांग्ला ऐसे कैसे किया भगवान जदुकुल का ध्वंस करने के लिए? अच्छे तो जदुकुल में प्रश्न होता है जो कौन से विरोधी थे, भक्तों के विरोधी और ये सब तो वो तो भारी पड़ता तो है, किंतु कृष्ण का विरोधी भक्ति का विरोधी कोई है? वो भी कृष्ण की माया है, वो उनको ऐसा कराया। प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्विकी शाम, ये कृष्ण विरोधी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, संसार की शिक्षा को देने के लिए शायद ऐसा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अंत में ये कहा है, क्या ये क्या है? ये जादू है, हुआ कुछ नहीं, कोई लड़ाई टड़ाई कुछ नहीं हुई, जादूगरी थी कृष्ण की। कृष्ण की जोगमाया क्या ऐसी जादूगर नहीं कर सकती? हुआ नहीं और लोगों ने देखा, कौन देखा? वैसे ही लोग देखा जो कि भक्ति में जिनका अधिकार नहीं, उन लोगों के लिए ऐसी लीला मोहन लीला। तो कृष्णार्थी ये लोग कृष्ण के आश्रित हैं, कृष्ण के बल से गर्वित हैं, देवता लोग भी इनको हरा नहीं सकते, इनके विरुद्ध में कोई शस्त्र धारण करे ये संभव पर नहीं है। यदवंशियों के स्वर्गलोक में जाकर के देवताओं को भी परास्त कर दिया सर्वशक्तिमान भगवान, उनका संहार कर सकते थे, कृष्ण के लिए संभव है, किंतु वो भी नहीं किया। क्यों? विष वृक्ष को पालन करके और फिर उसको छेदन भी नहीं किया जाता। अस्त्र शस्त्र पात्र विशेष से मोह और अमोघ होते हैं, माने उनको अस्त्र शस्त्र को जितना ब्रह्मास्त्र भी है कृष्ण ने उसको रुकवा दिया अर्जुन के द्वारा, ये अमोघ किंतु उसको रुकवा दिया, उसका जो अस्वस्थामा ने चलाया था और कृष्ण ने उसको अर्जुन को कह सकते या अपने ऊपर में ले लिया, अपने ऊपर गदा के ऊपर में रोक लिया, किंतु ब्रह्मसात अमोघ। कैसा ब्रह्म, ब्राह्मण कैसा भी, दुर्वासा ऋषि हैं और लोग सब ऋषि लोग हैं। दुर्दम्य जादुओं के संहार के लिए कृष्ण ने अमोघ अस्त्र ये ब्रह्मशाप का वर्णन किया, तो इसके द्वारा सभी काम एक साथ में हो जाएगा। इसलिए ऋषियों को प्रेरणा देकर के भेजा, जहां सोमनाथ का मंदिर है, और उस दिन सब तरह तरह के असमय में पिंडारक तीर्थ में असमय में रक्त की धारा गिर रही है, कुत्ते और ये सब जानवर लोग रो रहे हैं, गधे रो रहे हैं, बड़ा अपशकुन हो रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ करके चुपचाप बैठ रहे हैं। और इसी बीच में उद्धव से आकर के उद्धव को बतलाया सब, और बहेलिए ने ये किया, इधर में ही हुआ, और सब लोग सरकंडों से लड़ मर कर ये मैस मेरी जिम जादू का हो गया, जोग मैंने ऐसी लीला दिखला दी। तो इस सब का वर्णन पीछे करेंगे, आज यहीं तक समाप्त। कहने अरण्य बोल, अब तुम जा सकती हो, नहीं तो रात तुम्हारे लिए छोड़ दिया 6:30। फ्रॉम टुमारो आई विल सीट ऑन 5 एंड 5:30। हाँ 5:30 6:30 खत्म कर दे ना, अभी अभी सवेरा है, तुमसे अभी प्रकाश जल्दी अभी चले जाए। बोलो क्या बर्डन, बर्डन ऑफ अर्थ, कल
7:30 चले आएंगे। Thank you. disobedient, who is making chaos, his devotee, it is not possible for him to kill them. So he gives to his devotee. How come the Jokumar arranged all this thing? So he discovered a new theory. How to take the Jadavas away from this earth.
Hello.
So the Jadavas are completely protected by Krishna and they have taken shelter of Krishna completely. So none can dare to take weapon against them. And they are unconquerable by even demigods. So Krishna arranged other things. He did everything by Brahmasa, crossed by Brahmanas. Why not Krishna did himself? His own proverb, Vishnikhavi Sambartha, Sam Chetra Masambhatam. If you cultivate a poison tree, even you will not allow to kill it because it's not proper. So Yadubamsa is Krishna's own dynasty. So Krishna, if he kill them, it's not proper for him. So he not kill them by himself. So that means they describe like Brahmastra is unfailable. The Asatama arranged for grandsons of Arjuna who was womb of his mother. So Arjun checked it. Even Krishna checked by his own club. But Brahmasa is infallible, none can check it. Who is the Brahmasa? Brahmans like Durvasarisi and etc. There are so many Brahmans, they are cursed, they cancel your Brahmasa. So by Brahmasa, Krishna did everything. He was sitting under a king, Brahmastitha, all his dynasty. They fight each other